शांति, ओम शांति। समय कितना तेज भाग रहा है हम देख रहे हैं, और बाबा जो हमसे चाहते हैं हम वो कितना कर चुके हैं या कर रहे हैं वो हम अपने आप से पूछे। बाबा हम बच्चों में कितनी उम्मीदें रखते हैं, हम उन उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं या नहीं वो हम अपने आप से पूछे। हर मुरली में बाबा हमें कितनी धारणा की बातें बताते हैं, हम कहाँ तक वो बातें धारण करते हैं वो हम अपने आप से पूछें। कहते हैं ना, हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तो तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि तो बाबा हर मुरली में बताते हैं। ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा तीव्र पुरुषार्थ करने की बातें न बताते हो। तो आज भी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ करने लिए क्या क्या करना है वो बताया। स्थूल कौन सी तैयारी करनी है, स्थूल में, सूक्ष्म में तो है ही बहुत, लेकिन स्थूल में क्या करना है, तो बाबा ने कहा चार्ट लिखो। ये सबसे अच्छी युक्ति है तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि ये चार्ट आप लिखेंगे तो बाबा को जरूर मालूम पड़ेगा। हाँ, बाकी अंदर में क्या चल रहा है वो बाबा कोई थॉट लीडर नहीं है, वो चार्ट लिखेंगे तो जरूर बाबा को भी पता चलेगा। तो बाबा को कैसा चार्ट दिखाएंगे। आज बाबा ने कहा है कि व्यापारी लोग ये ज्ञान बहुत अच्छा ले सकते हैं, नौकरी करने वालों से व्यापारी ज्यादा ये ज्ञान अच्छा कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि व्यापारियों को तो नफा नुकसान, घाटा फायदा, ये सब उनको नोट करना होता है। तो इसीलिए उनका ध्यान उसी पर रहता है कि मेरा फायदा किसमें है, मेरा नुकसान किसमें है। तो तुम बच्चों को भी ये ध्यान रखना है, मेरा फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है। अगर पाप कर्म कोई होगा तो जरूर नुकसान ही होगा। तो पाप कर्म हमसे कोई भी नहीं हो तभी तो फायदा होगा ना। तो आज बाबा ने हमें सावधान भी किया है, धारणा की भी कई बातें हैं और ज्ञान के भी कई गुह्यराज बाबा बताते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 13/10/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है। लक्ष्य अगर पक्का है तो लक्षण भी उसी अनुसार आएंगे। तुम्हें देवता बनना है इसलिए माया के अवगुणों को त्याग करो। देवताओं के पास माया नहीं आती, तो देवता बनना है इसलिए माया के अवगुणों को त्याग करो। अभी कौन से अवगुण है बाबा ने मोटे रूप से बताए हैं, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। महापाप केवल पाप नहीं है, महापाप है। ये छोटी छोटी चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने के बाद ये महापाप बन जाते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है इसलिए माया के अवगुणों का त्याग कर, गुस्सा करना, अवगुणों का त्याग करो, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे टिके जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है, कौन टिके जा सकते हैं और किन को घाटा पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता में रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत टिके जा सकते हैं और घाटा किनको पड़ता है? घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, दिन भर देह अभिमान में है तो घाटा ही पड़ेगा ना। तो जिन्हें अपना पोता भी रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं, घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। तो बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वो यहां भी तीखे जा सकते हैं। रोज रात को अपनी मुरादी देखते हैं ना, घाटा कितना फायदा कितना, तो यहां भी वो तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में, अपना मुखड़ा देखो। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, हम सब कौन है रूहानी पाठधारी, बाप समझाते हैं क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का है ना, नाटक तो मनुष्यों का है, आत्माएं हैं परंतु आत्मा देह में है तो मनुष्यों का नाटक है। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव की पूजा करते हैं, बहुत कुछ शिव पर कैसे कितने तीर्थ यात्राएं करते हैं, शिव की महिमा गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे को प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो बाबा कहते हैं इनसे मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? बाबा ने एक कारण बताया, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। तो चाहे कितनी भी भक्ति करे, क्या भी करे, उपवास करे, व्रत करे, नियम कर, जो भी करे, कष्ट दे अपने तन को, लेकिन उतरती कला का समय है तो इसीलिए ऊंचे तो चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति में है उतरती कला, ज्ञान से सदगति होती है। तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे, ज्ञान तो है नहीं, न अपना ज्ञान, न परमात्मा का ज्ञान, न समय का ज्ञान, न कर्मों का ज्ञान, बस भक्ति तो कर ली। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरे इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है उतरती कला, ज्ञान से सदगति होती है। तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे, यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, तो शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उनको तो ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूछते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं, शिवलिंग की भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले भक्ति शुरू करते हो द्वापर युग से, तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय तो 4-5 हजार का होगा जब बनाया होगा द्वापर में, तो बाबा कहते उस समय तो हीरे का शिवलिंग बनाया, सोमनाथ मंदिर में तो हीरे का शिवलिंग था जो लूटा है ना, तो इसीलिए बाबा कहते उस समय 4,000-5,000 का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ये ब्रह्मा बाबा के समय होगा, साकार बाबा के समय बाबा कहते 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं, कोई मुंह जैसा हीरा कहां इस समय निकलेगा। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान बिगर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया है तो हम पूजा तो नहीं करेंगे ना, हमें हमारे सम्मुख है ज्ञान का सागर स्वयं भगवान, तो हम कोई शिवलिंग की बैठ के पूजा तो नहीं करेंगे। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, क्योंकि चैतन्य में सम्मुख में है उनको ही तुम याद करते हो। आप पूजा नहीं करते शिवलिंग की, लेकिन शिव बाबा को याद करते हैं। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तो गीत में भी कहते हैं हे बच्चों प्राणी, तो प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, तो प्राणी हो गई आत्मा। प्राण निकल गया वो आत्मा की शक्ति चली गई तो फिर मुर्दा हो गया। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं अपने अंदर जांच करो, कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है, कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। करो चेकिंग अपने अंदर, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे, पद नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, हाँ देवता ही कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितने मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना तंग करना बुरा काम करना ये सब पाप है। तो तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए, चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, क्या प्रतिज्ञा की हमने बाबा से, बाबा मेरा तो एक आप दूसरा न कोई, की है ना प्रतिज्ञा सबने, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो एक आप दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं ये, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है, वो तो बाप को जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है ऐसे कहते हैं, फिर दूसरी तरफ लिंग की पूजा करते हैं। तुमको तो अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है कि जिस लिंग की तुम पूजा करते हो वो कौन है। तो नाम रूप से न्यारा कह दिया, फिर लिंग की पूजा क्यों करते हो। तो बाप कहते हैं ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाता है, परमात्मा किसको कहा जाता है वो तो बताओ, फिर महान आत्मा किसको कहा जाता है वो भी सुनाओ। तो महान आत्मा किसको कहेंगे, श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है वो महात्मा है। वो महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य, कौन है महात्मा। वो विकार से पैदा तो होता नहीं है, श्री कृष्ण विकार से पैदा होता नहीं है, वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। तो निर्विकारी को तो बहुत टाइटल दे दिए, देखो श्री कृष्ण की कितनी महिमा है, निर्विकारी को तो बहुत टाइटल दे सकते हैं, और विकारी को क्या टाइटल दे सकते हैं, शरीरी विकार की पैदाइश है तो बाबा कहते क्या टाइटल दे सकते हैं। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वो है सबसे ऊंच से ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी है तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, क्या है सतयुग, श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि भी सब श्रेष्ठ है, वहां माया रावण है ही नहीं, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते ही नहीं है, उन सांप बिच्छू आदि आदि बाबा कहते वहां तो होते ही नहीं है ऐसे तमोगुणी जानवर। सतयुग में तो विकार का नाम नहीं, फिर वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो, वहां विकार होते नहीं क्योंकि, हाँ बाबा क्या कहते हैं, वहां विकार नहीं होते क्यों, वो वहां है योग बल, योग बल और भोग बल बहुत अंतर है, तो वहां है योग बल। तो बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो, अपने अंदर झांको, पूरी जांच करो, मेहनत बिगड़ तो विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, हाँ बिंदी है, इसमें मोजने की कोई दरकार ही नहीं है, कैसे आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, बाबा कहते इसमें मोजो मत, इसमें मोजने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हम देखें, अच्छा आप कहते हो बिंदी है तो कम से कम मुझे उस बिंदी का साक्षात्कार भी हो जाए, हाँ मां कहते ना बिंदी का साक्षात्कार भी हो जाए, तो बाबा ने देखो क्या कहा, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, अब देवी देवताओं की मूर्ति की तो बहुत पूजा की, उनको तो देख सकते हो ना, तो देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, कितनी देवताओं की पूजा की, चलो उनके साक्षात्कार भी हुए, लेकिन बाबा कहते फिर भी उतरती कला तो है ही ना, चढ़ती कला तो हुई नहीं, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हो ना, भगवान डायरेक्ट कहते हैं मैं सुप्रीम सोल हूँ, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेगा, सुप्रीम फादर कहेगा क्या, लौकिक बच्चा अपने लौकिक बाप को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेगा, एक को ही कहा जाता है सुप्रीम फादर। सन्यासियों को तो बच्चे है ही नहीं जो बाप कहे उनको, हाँ लौकिक बच्चे तो कोई नहीं होगा सन्यासी को, होंगे लौकिक बच्चे वो तो अभी दूसरा जन्म ले लिया ऐसे समझते हैं, तो वो लौकिक बच्चे तो वो कहेंगे नहीं बाप उनको, तो सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहे, ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था मैं सबसे बड़ा बचरे वालू, मेरी कितनी बड़ी गृहस्थी है, कितने मेरे बच्चे, सबसे बड़ा तो शिव बाबा है, सब बहुत बच्चे हैं, और फिर नेक्स्ट है ब्रह्मा बाबा जिसके सारे बच्चे हैं, तो बहुत बचरे वाले हैं हमारे ये दो पिता, तो लौकिक बाप के भी जो थोड़े बच्चे हैं तो वो भी बचरे वाले, बाकी कोई सन्यासी को तो नहीं कहेंगे ना बचरे वाले, उसने तो सब सन्यास कर लिया। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे, ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उनका कोई ग्रस्त आश्रम तो ठहरा नहीं, सन्यासियों का कोई गृहस्थ आश्रम नहीं ठहरा, तो बाप कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो, अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे। परमा, ये शब्द केवल परमात्मा के लिए ये सुप्रीम। अभी तो नीच, सभी तो नीच समझते हैं खुद को, तो बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्यों गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते? क्योंकि उनकी तो मुकर्रर तनख्वाह होती है, महीने के अंत में उनको तनख्वाह मिलती है, उतनी मिलेगी जितनी पिछले महीने मिली थी, उनसे तो कोई ज्यादा नहीं मिलेगी। जब तक उनकी कोई प्रमोशन न हो, कुछ न हो, तब तक वही तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे अफसर इतने नहीं जाते हैं तीखे। पढ़े लिखे तो अफसर बनते हैं, हाँ वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे या कोई बिजनेस, तो कोई बिजनेस वाले ज्यादा पढ़ने में शौकीन नहीं होते, उनको तो धंधा चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर इतने नहीं। व्यापार में तो आज 500 का पांच, आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। आजकल माताएं भी बहुत व्यापार करती है ना। जो माताएं थोड़ी बिजनेस करती है तो उठाओ, करती है कोई? हाँ देखो, एक करती है, दो, हाँ थोड़ा, तो बाकी तो भाई लोग जो बिजनेस करते हैं हाथ उठाओ। हाँ बिजनेस करते हैं, देखो तो आप लोगों को तो बहुत फायदा है, हाँ पता है कैसे पोता मेल रखना होता है ना। तो बाबा कहते हैं माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। देखिए कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं, बस परिवार को संभालना है, बाबा कहते हैं और सहज है। कन्याओं के लिए तो उनके उनसे भी सहज है, माताओं के पास तो फिर भी गृहस्थी है, कन्याओं को तो कोई गृहस्थी भी नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं और भी सहज है। क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, विकार की सीढ़ी चढ़ी है फिर पवित्र बनते हैं, तो वो विकार की सीढ़ी से तो उतरना पड़ता है, और कन्याएं तो पवित्र हैं। क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है, हमारी माताएं बहुत मेहनत करती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं है, तो छोड़े फिर क्या, माताओं को तो छोड़ना पड़ता है ना, ये विकार की सीढ़ी उतरनी पड़ती है। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, भले वो भी उतरते हैं, लेकिन पुरुष फिर भी थोड़े कभी कभी ढीले पड़ सकते हैं, हमारी माताएं तो बहुत पावरफुल। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल भी करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वो सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हो, कुमारियां तो पवित्र ही होती है, सबसे जास्ती होता है, शादी हो गई तो सबसे जास्ती होता है पति से प्रेम। क्या कुमारियों को तो पति है नहीं, हाँ शादी हो ही गई तो पति से जो प्रेम इतना होता है वो तो अभी अनुभव नहीं है, तो सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में फिर मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान, अब छोटा बच्चा है वो तो अनजान ही होता है। शादी के बाद मोह शुरू होता है, बड़ा हुआ शादी की तो मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी तो निर्विकारी है, पूजी जाती है। अब नवरात्रियों में कितनी कुमारियों, छोटी छोटी कुमारियों की बहुत पूजा हुई। तो कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम ही है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। अभी पूजा लायक नहीं हो क्योंकि शरीर तो पतित है, अभी महिमा लायक जरूर हो पर पूजा लायक फिर बनते हो। बाप भी तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है भगवान भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु क्या समझाया जाता है कि भगवान तो एक है, परमात्मा एक है। बाकी बनाते हैं वो टाइटल ले लेते हैं, परंतु जो सब जो ऊंचे से ऊंचा वो तो एक ही है। तो भगवान तो एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, आत्माओं की वृद्धि नहीं होती है, जितनी आत्माएं हैं उतनी रहेगी। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है, जनसंख्या मनुष्यों की करेंगे ना। आत्माएं तो अनादि अविनाशी है ही, कोई नई तो पैदा नहीं होती है। वृद्धि मनुष्यों की होती है, आत्माओं का तो लिमिटेड नंबर है, बहुत आते रहते हैं। अब कई कहते कितनी होगी आत्माएं, अब बाबा कहते इसमें क्या लेना देना, देखो जो मनुष्य जितने उतने आत्माएं तो भी है ना, और भी आती जा रही है। तो आत्माओं का तो लिमिटेड नंबर है, जब सब आ जाएगी फिर जाना शुरू हो जाएगा, लिमिटेड नंबर है, बहुत आती रहती है। जब तक वहां है आत्माएं परमधाम में, जब तक है अंत तक आती रहेगी, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, सूखता नहीं है ये, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है, बढ़ के झाड़ से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, वो हरा भरा खड़ा है और फाउंडेशन है नहीं। तो तुम्हारा भी ऐसे फाउंडेशन है नहीं, देवी देवता धर्म जो ओरिजिनल धर्म है वो है नहीं, बाकी सब धर्म और खड़े हैं, फाउंडेशन है नहीं। कुछ तो कोई निशानी है, उस फाउंडेशन की कुछ निशानी है। हाँ, कलकत्ता में जो बड़ का झाड़ है, हम देखने गए थे वो बोटानिकल गार्डन में, तो वहां पर बहुत बड़ा है ना, अनेक उनकी जो शाखाएं हैं वो कैसे, वो भी थुड़ बन जाती है और कई जड़े निकालती है। लेकिन हमने उस जो दिखा रहा था उसे पूछा, वो फाउंडेशन दिखाओ जहां से ये पैदा हुए, तो कहा वो तो सड़ गया। मैंने कहा कुछ तो यादगार होगा उसका, तो हमको लेके गया वहां, बीच में बस इतना सा था, थोड़ा सा दिखाया, बोला ये थुड़ है, बाकी तो सब अलग 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 हो गए, हम थुड़ खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं कुछ न कोई निशानी है, तो वो थुड़ है देवी देवता धर्म। क्या निशानी है? देवी देवताओं की मूर्तियां, ये निशानी है। कुछ न कुछ निशानी है, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहां गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है अखंड ज्योति स्वरूप, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ अखंड ज्योति स्वरूप का, और उसने कहा बस करो बस करो, अभी मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। हाँ, वो सह नहीं कर सका वो तेज। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है परमात्मा का स्वरूप बिंदी है, तो गीता में लिख दिया कि अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे भक्त लोग भी, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। यज्ञ में भी ऐसे हुआ, शुरू में साक्षात्कार करते थे एकदम तेजोमय ज्योति का, तो कैसे बहुत आंख जब खोलते थे आंखें तो आंखें लाल लाल होती थी, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वो तो साक्षात्कार था, तो बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहां तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, मरकरी होता है पारा, उसको पकड़ो ना तो खिसक जाता है, वो कैसे हाथ में आता ही नहीं। तो साक्षात जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्यालात आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते, फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, तो अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, वही धारणा की बात है, अब हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता, पोता में जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं, इस ज्ञान में भी हम पोता मेल रखेंगे तो बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे, है ना, ज्ञान रत्नों से धनवान बन जाएंगे। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रहे हैं, बाप कहते हैं मेरी आत्मा में ये ज्ञान ऊंधा हुआ है, हूं बहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था, वही निकलेगा बाबा के मुख से भी, वही ज्ञान बच्चों को भी समझाएंगे, और क्या जाने, दूसरे थोड़ी जानेंगे, जब बाबा भगवान अपने बच्चों से ही मिलते हैं, उनको ही बताते हैं, और क्या जाने, दूसरे को क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट ऊंधा हुआ है, बदल नहीं सकता है। कई कहते बाबा अगले कल्प में हमारा ये पार्ट बदल जाए, बाबा कहते नहीं बदल सकता है, इसलिए इस जो है उसको स्वीकार करो, बदल नहीं सकता है, न कोई छुटकारा पा सकता है। चलो थोड़ा बदल जाए, अच्छा हो जाए इससे, या छूट जाए, दोनों ही नहीं हो सकता है, न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ बाकी क्या होता है, हाँ बाकी समय, कुछ समय मुक्ति जरूर मिलती है थोड़ा, क्योंकि परम धाम जाएंगे तो वो तो जल्दी तो नहीं आएंगे, जो द्वापर युग की आत्मा होगी वो तो आधा कल्प तो ऊपर ही रहती है, और अभी जो आत्मा यहाँ आती है वो तो पूरा कल्प ही जैसे ऊपर है, थोड़ा समय के लिए आती है पर आना जरूर है। तो बाबा कहते हैं बाकी समय मुक्ति मिलती है, तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे, मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं। जो मोक्ष चाहते हैं कि हम तो वापस नहीं आए, वो बाबा का ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको आना ही अंत में, तो वो ज्ञान क्या सुनेंगे, ज्ञान वही सुनेंगे जिनको शुरू में आना है। तो बाबा कहते हैं मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वो फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, अंत में आएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए, जो आत्माएं अंत में आएंगी वो कैसी होगी, मच्छरों सदृश आए और गए, हाँ मच्छर आए और मर गए तो पता भी नहीं चलता, मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था, तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंचे थे, अब कितने नीचे नीच बने हैं, कितने ऊंचे और कितने नीच बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, ऊंच बनाते बाबा, तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने मधुबन में, इसका नाम ही पड़ा है, कहाँ आए हैं हम सब, मधुबन में, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं बाबा, मधुबन में ही मुरली चलाते, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है, वहां सेंटर पर सुनते हो और मधुबन में सुनते हो, बाबा कहते हैं बहुत फर्क रहता है। आगे चल, बहुत पाठ देखने हैं, क्या क्या ड्रामा में आना है, आगे चल, बाबा कहते हैं बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए, टेस्ट निकल जाए, इसलिए पहले नहीं सुनाते, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। ब्रिजमोहन भाई जी भी एडवांस पार्टी में गए, एडवांस पार्टी तो कितनी खुश हो गई, कल संदेश सुना होगा ना आपने, एडवांस पार्टी इतनी खुश हो गई, वाह हमारे पास ऐड हो गए, और हम कहेंगे हमारे भाई चले गए, और वो कहेंगे हमारे भाई आ गए। हाँ मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा एक बार बाबा आए हुए थे शांति वन में, और हमारी एक विदेशी बहन थी साली, विदेशी बहन थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, बहुत सीरियस थी, और बाबा के नीचे मुरली चल रही थी, और उसी समय उसने ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा, मालूम होगा इनों को हमारे विदेशी भाइयों को, उसने शरीर छोड़ा उसी समय, बाबा के नीचे शांति वन में मुरली चल रही थी, उसने ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में शरीर छोड़ा। तो बाबा जब मुरली पूरी हुई तो निर्भैर भाई बाबा के पास गए, और बाबा को कहा बाबा अब सैली चली गई, सैली चली गई, तो बाबा ने कहा चली नहीं गई, वो आ गई, आ गई, यानी हमारे तरह से तो हम कहेंगे चली गई, और बाबा के पास आ गई, तो बाबा थोड़ी कहेंगे हाँ चली गई, नहीं आ गई। तो एडवांस पार्टी भी कितनी खुश हो गई कि हमारे पास, हाँ देखो इतने वरिष्ठ भाई आ गए, अभी हम जल्दी जल्दी अपना कार्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं तो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, कहाँ गया, तो बाबा तो पहले सुनाए तो टेस्ट निकल जाए, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, सबको ये बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है, देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, हाँ देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए, परंतु ये रथ तो शिव बाबा का रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। जितना शिव का की पूजा करते हैं, नंदी की भी उतनी पूजा करते हैं, कोई कम पूजा नहीं करते, हाँ नंदी को भी कितना मान देते, तो इसीलिए बाबा कहते इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा वो डंडे खाने पड़ेंगे। बड़े का रिगार्ड तो रखना है ना, आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, आदि देव की मूर्ति है वहां दिलवाड़ा में नीचे, आदिनाथ कहते तो उनकी तो उनका तो कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो तो चैतन्य का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, सोचो तो सही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी बनना है फॉलो फादर। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। हमारे ब्रजमोहन भाई ने पूरा फॉलो फादर किया, बस एक बाबा दूसरा न कोई। आशा बहन ने कितनी सुंदर बातें बताई थी परसों ब्रजमोहन भाई के बारे में। तो बाबा कहते हैं यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल 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 एक रस तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे फॉलो फादर की। इस पाठ से बाबा कहते हैं यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते। अगर मैं इस समय जो कुछ कर रहा हूं, बाबा अगर यह होता तो ये करता, अगर बाबा नहीं करता तो मुझे भी नहीं करना है। इसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है उस जाल से फिर निकलो। तो समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगा। स्लोगन, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, अपने स्वभाव को सरल बनाओ सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए। हाँ, दादी जानकी ने एक बार सुनाया था सच्चाई सफाई, सदा दादी जानकी के मुख में था सच्चाई सफाई। तो दादी ने पूछा था सच्चाई पहले या सफाई पहले, पहले क्या क्या कहेंगे बहने, सच्चाई पहले या सफाई पहले? सफाई पहले। अंदर इतनी सफाई हो तब सच्चाई आएगी। सच्चाई ऐसे नहीं आएगी, परंतु अंदर पहले सफाई चाहिए, इतना साफ हो तभी तो, कहते हैं ना सफाई होगी तभी तो लक्ष्मी आती है। तो सच्चाई तब आएगी जब अंदर में अपने आप को देखते रहेंगे कि कितनी सफाई है मेरे मन में। तो सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सरलता, सबके साथ सरल, कठोर नहीं। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, भावुक बनते ना अपने आप, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। हाँ बाबा कहते सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कहते हैं ना विवेक और भावना, केवल विवेक चलाएंगे, दिमाग बहुत चलाएंगे तो नास्तिक बन जाएंगे, और केवल भावना होगी तो अंधविश्वास हो जाएगा। तो भावना और विवेक दोनों को मिलाना है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल भी बाबा ने अव्यक्त मूल्य में इतनी सुंदर बात कही, विश्व कल्याणकारी। हद के तो कल्याणकारी बहुत बन जाते ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज क्लास की टोली गरम गरम भुट्टा है जो शांति स्तंभ के पास सबको मिलेगा, वही लेंगे शांति स्तंभ के पास गरम गरम भुट्टा। लेकिन वहां पर बैठ करके नहीं खाना है कि डाइनिंग हॉल में जाकर ही खाना है, नहीं तो वही बैठ जाते हैं, वहां आंगन में तो सब दाने गिरते हैं, तो इसीलिए वहां नहीं खाना है, डाइनिंग हॉल में जाके खाना है। चलो ओम शांति।